शांति, शक्ति, सहयोग, शुक्रिया, सेहत और सुरक्षा के वाइब्रेशंस हर एक तक पहुंचाने के लिए है। मैं दिव्य आत्मा हूं, डिविनिटी, प्योरिटी मेरा व्यक्तित्व है। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल पवित्र है, दुआ है, ब्लेसिंग है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा मन स्थिर है, शांत है, एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं, मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाली शक्ति हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं निर्भय आत्मा हूं, निडर हूं, फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा संस्कार है। मेरा मन शांत, बोल मधुर, कर्म श्रेष्ठ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दुआएं मेरे चारों तरफ एक गोल्डन व्हाइट लाइट एनर्जी सर्कल है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ कवच है। मैं सुरक्षित हूं, परमात्मा की शक्तियां परमात्मा का प्यार हरेक तक पहुंच रहा है। हरेक मन परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इस पूरी सृष्टि पर हरेक तक पहुंच रही है। हरेक परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, हरेक का मन शांत है, सुखी है, सुरक्षित है। हरेक का शरीर स्वस्थ है। हरेक सुरक्षित है, निडर है, निश्चिंत है, खुश है। परमात्मा की शक्तियां पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का कवच है। मेरी सृष्टि सुरक्षित है। मेरा देश सुरक्षित है। मेरा परिवार सुरक्षित है। सफलता हमारे लिए निश्चित है। विजय हमारे लिए निश्चित है। परमात्मा का शुक्रिया। हरेक का शुक्रिया। हरेक जो अपना न सोचकर दिन रात सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।
दाता तेरी याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझ समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी याद में। गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए ईश्वर तेरी याद में। मौला हक तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में।
शांति, गुड इवनिंग शांति। बहुत सुंदर गीत हम सभी सुन रहे थे। क्या सुना हमने गीत में? क्या सुना हमने गीत में? कोई चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, कल हमने बात की थी, कल किस बारे में बात की थी हमने? कल कर्म सिद्धांत के बारे में बात की थी। बहुत सारी बातें हमने समझी कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, हमारा हर कर्म काउंटेबल है। फिर हमने वेरी गुड, अच्छा सबके सबके आंसर आ गए, वेरी गुड, हम सबने कुछ पा लिया है। सबसे पहले तू ही दिन बाबा, हमको सदा महफूज है बाबा तेरी याद, वेरी गुड, अच्छे से सुनाए सभी। तो क्या बात कर रहे थे हम, कर्म सिद्धांत के बारे में हमने कल बात की थी, और एक एक बात वहां पर शुरू हुई थी, वो थी 84 जन्मों की बात, 84 जन्मों की कहानी। तो आज हम पहले उसको थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद हम ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना कैसे हुई और कैसे शिव बाबा ने सारा ज्ञान हम सब मनुष्य आत्माओं को दिया उस पर भी बात करेंगे। पर उन सभी से पहले हम सब क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम सब कुछ देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो सब जहां भी बैठे हैं सीधा होकर के बैठेंगे। जी आप कुछ कह रहे थे सुप्रिया दीदी?
गो अहेड।
तो अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे, सीधा होकर के बैठेंगे। मस्तक के बीच स्वयं के दिव्य ज्योति स्वरूप को देखें, जैसे स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा उस मस्तक में एक दिव्य ज्योति चौंकती हुई नजर आ रही है। ठीक ऐसे ही स्वयं की भौतिक देह मस्तक प्रकृति के बीच स्वयं के दिव्य ज्योति स्वरूप को देखें। स्वयं को याद दिलाएं अपने निज स्वरूप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, चमकता हुआ तेजो मैं सितारा हूं, शांति मेरा ओरिजिनल नेचर, शांति मुझ आत्मा में समाई हुई है और मुझसे ये शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। जिस भी स्थान पर हम बैठे हैं, घर में, ऑफिस में, गार्डन में, अनुभव करें कि मस्तक से शांति के प्रकंपन, प्योरिटी के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं, चारों ओर का वातावरण एकदम शांत होता जा रहा है, सारी हलचल, लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सब फिनिश होती जा रही है। मुझ शांत स्वरूप आत्मा की शांति के प्रकंपन पूरे वातावरण को शांत करते जा रहे हैं। फिर से अपने शिव के ज्योति स्वरूप को देखेंगे। और इसी स्थिति में स्थित होकर हम आज इस यात्रा को प्रारंभ करें। ओम शांति। सब में मन को शांत किया, जो बहुत सारी ऊपर नीचे की वाइब्रेशन थी, कहीं की इधर की उधर की, अभी हम सब एक ही जगह पर एक ही फ्रीक्वेंसी में बैठे। तो कल हमने बात की थी कर्म सिद्धांत के बारे में, और वहां जो एक बात हमारी अधूरी रह गई थी वो थी 84 जन्मों की बात। हमने बात की थी ना, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है, कितने जन्म लेती है, कितने जन्म लेती है मनुष्य आत्मा? 84 लाख जन्म होते हैं या सिर्फ 84 होते हैं? क्या विचार? 84 होते हैं, ओनली 84 लाख नहीं होते। 84 लाख की जो बात है कि 84 लाख योनियां, तो 84 लाख 84 लाख स्पीशीज हो सकती है संपूर्ण संसार में। देयर मे बी 84 लाख स्पीशीज प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड, बट हम 84 स्पीशीज में जाएं, आज मनुष्य हैं, कल कुत्ता बने, परसों बिल्ली, फिर कुछ और, वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो 84 जन्म है, ये हम कितने सालों में लेते हैं, कितने समय में हमारे 84 जन्म होते हैं? अंजना जी लिखते 5000 years, वेरी गुड। अब एक चीज और इसमें जानने की है, एक चीज तो ये जानने की है कि ये जो 5000 वर्ष है ना, इसमें 84 बर्थ्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ना? तो देखिए, सत्युग में जब आत्मा, क्योंकि सत्युग की आत्मा प्योर है, हम फिर से उस सर्कल को याद करेंगे, सृष्टि चक्र को याद करेंगे, चारों युगों में हम देखते हैं हमारे कितने जन्म हुए, सत्युग, त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। सत्युग में आत्मा क्योंकि प्योर है, जब सोल प्योर है, शरीर भी शुद्ध है, क्योंकि प्रकृति भी सतो प्रधान है, प्योर है, तो आत्मा और शरीर दोनों प्योर है, तो जो हमारी एवरेज लाइफ है, एवरेज उम्र है मनुष्य की, देवात्माओं की, वो कितनी होगी? वो लगभग, जो अप्रोक्सीमेट शिव बाबा ने हमें बताया है, वो है 150 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स। तो अगर हम 1250 साल को देखें तो उसमें एक आत्मा के कितने जन्म हो सकते हैं? 8 जन्म, अराउंड 8 बर्थ्स एक मनुष्य आत्मा सत्युग में लेंगे। मैक्सिमम 8 जन्म किसी भी आत्मा के सत्युग में हो सकते हैं। फिर जब धीरे धीरे नीचे आए, सत्युग से समय ट्रांसफर हुआ, तो सत्युग से त्रेता युग में आते आते आत्मा की क्वालिटीज भी क्या हुई, कम हुई कि बढ़ गई? क्या विचार है? आत्मा की क्वालिटीज कम हो गई। और अगर आत्मा की क्वालिटीज सतयुग से अभी तक आते आते, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग तक आते आते कम होती गई, तो फिर क्या होगा? उम्र तो कम होती जाएगी लेकिन जन्म बढ़ते जाएंगे, है ना? उम्र पहले 150 साल थी तो जन्म 8 थे लगभग, फिर उम्र थोड़ी और कम हो गई, लगभग 125 साल, 120, है ना, 125, किसी का 123 भी हो सकता है, तो एवरेज 120 से 125 के आसपास एवरेज एज हो गई, तो नंबर ऑफ बर्थ क्या होंगे, लगभग 4 जन्म बढ़ जाते हैं। तो त्रेता युग में बाबा ने जो हमें बताया है, वो बताया है कि त्रेता युग में एक मनुष्य आत्मा के कितने जन्म हो गए? 12 जन्म। फिर समय और आगे गया, फिर क्या हुआ? फिर हमारी जो एवरेज लाइफ थी वो और कम हो गई, समय उतना ही है 1250, पर क्योंकि अब हम मनुष्य आत्माएं अपवित्रता की राह पर चलने लगी, अब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आयु और कम हो गई। आयु और कम हो गई तो फिर क्या हुआ? मनुष्य की आयु और कम होने लगी, क्योंकि आत्मा बार बार जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आके आत्मा इम्प्योरिटी की ओर भी बढ़ गई, आत्मा की शक्ति भी कम होने लगी, तो जन्म बढ़ जाएंगे। तो कितने जन्म हुए त्रेता युग में होते हैं? 21 जन्म। समय वही है लेकिन जन्म ज्यादा हो गए। और कलयुग में आए तो अब देखिए आप, सतयुग त्रेता में तो हमारे कर्म भी अकर्म थे, लेकिन द्वापर युग में आकर के हमने विकारों के वशीभूत होकर के जो भी कर्म किए वो कितने थे? वो कर्म भी बहुत विकर्म थे। विकर्म थे तो हमारा हिसाब किताब ज्यादा बना, हमारे सिर पे पापों का बोझा हुआ। और जब हम आत्मा नया शरीर लेती है तो हम सब जानते हैं ना, जन्म होना और मृत्यु होना कितने पेनफुल प्रोसेस है। बच्चा कितना छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, फिर वो कैसे कैसे बड़ा होता है, गर्भ में भी उसको कितना दुख झेलना पड़ता है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कलयुग आगे बढ़ता गया, हमारी एवरेज एज और भी कम हो गई। आज तो देखो कोई एवरेज एज ही नहीं है, कोई किसी भी उम्र में शरीर छोड़ देता है, छोटा बच्चा भी, कोई बुजुर्ग भी, जवान भी, कोई वो नहीं रहा। तो कलयुग में आते आते मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है? 42 बर्थ। अब देखिए सतयुग के कितने थे? 8, त्रेता के 12, द्वापर के 21 और कलयुग के 42। टोटल करिए कितना हुआ? कितना हुआ? 8 + 12 + 21 + 42, 83। एक जन्म कहाँ रह गया? हमने देखा ना 84 जन्मों की कहानी है, एक कौन सा मिसिंग रह गया? एक ये जन्म है हमारा, जो जन्म हम अभी जी रहे हैं। वैसे दुनिया के हिसाब से तो ये शरीर के हिसाब से तो 84 बर्थ्स है, लेकिन अभी हमको एक नई समझ, नया ज्ञान, नई कॉन्शियसनेस आई है कि मैं बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यही तो कह रहे हैं ना, हम सभी हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमने परमात्मा को एक तरह से परमात्मा की गोद ली है, या शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, हम ये कह रहे हैं। तो हम उनके एडॉप्टेड बच्चे हैं। ये संगम युग का जो हमारा एक जन्म है ना, ये शरीर वही है लेकिन अब यहाँ से जन्म हुआ है। कॉन्शियसनेस हमारी बच्चे की बन चुकी है, कॉन्शियसनेस में हमें समझ आया मेरा नया जन्म हुआ है। पहले तक तो ये पता था ना, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी इतनी प्रॉपर्टी वो मुझे मिलेगी, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि मेरे फादर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, जो स्वर्ग के रचयिता हैं, और अब उनसे ये सब कुछ मुझे क्लेम करना है, है ना। जैसे हम अपने शरीर के माता पिता की प्रॉपर्टी को भी क्लेम करते हैं ना बच्चे के, इस पर मेरा अधिकार है, तो ऐसे ही शिव बाबा की जो प्रॉपर्टी है, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, उसको भी अब हमको क्लेम करना है। तो ये हमारा 84वां डायमंड जन्म है, सबसे श्रेष्ठ जन्म है। इसी जन्म के लिए गायन है, जो भक्ति में भी गायन था ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कहता भजन आता है भक्ति में। वो कौन से जन्म की बात है? वो पूरे साइकिल में जो भी जन्म हुए ना, थे हमारे इससे पहले के जन्म भी सारे मनुष्य के ही फॉर्म में थे, लेकिन ये वाला जो जन्म है, जिस जन्म में हम फिर से देवात्मा बनते हैं, बाकी तो हर दिन क्या हुआ, डाउनफॉल ही हुआ, इस संगम युग पर ही चांस है फिर से ऊपर चढ़ने का। तो ये वाला जन्म हमारा अनमोल है, इसलिए कहा गया इस जन्म को हीरे तुल्य जीवन। और वो जितनी भी बातें हमने सुनी है ना कि मनुष्य जन्म के बारे में, वो सब इस जन्म पे अप्लाई होती है। बाकी वो 83 भी थे मनुष्य ही जन्म, लेकिन दिस इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम इन आवर लाइफ इन द होल साइकिल। तो अभी ये क्लियर हुआ ना, हम सब मनुष्य आत्माएं मनुष्य के रूप में ही जन्म लेती है। हम में से कोई भी गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुअर नहीं बनता, उनकी योनि अलग है, उनके जन्मों के प्रकार अलग है। कई बार कुछ भाई बहने प्रश्न पूछते हैं कि हमने तो आज तक ऐसा सुना है, अगर छिप छिप के कुछ खाएंगे तो बिल्ली बनेंगे, छिप छिप के किसी की बातें सुनेंगे तो छिपकली बनेंगे, लेकिन अब बताइए मैंने गलत कर्म किए उसके बाद में बिल्ली और छिपकली बन गई, तो क्या बिल्ली और छिपकली को ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने कुछ रॉन्ग किया इस कारण वो बिल्ली और छिपकली है? क्या विचार है? वो तो ऐसा कोई रियलाइजेशन नहीं है ना। लेकिन आज हम अगर मनुष्य जीवन में हैं और हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो हम क्या कहते हैं? न जाने कौन से कर्मों की सजा मिल रही, हमारे मुख से यही शब्द निकलता है, अर्थात मेरे किए हुए कर्म मुझे मनुष्य जीवन में ही भुगतने पड़ रहे हैं। हम देखते हैं, कल भी बात की थी ना, हमने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आजकल रोड पर, फुटपाथ पर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, जिसने जैसा किया वैसा फल वो पा रहे हैं। अगर वो वहां नहीं होते, उनकी जगह वो उसके जगह है मनुष्य जीवन, लेकिन स्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है? कोई मनुष्य जीवन है कि चौराहे पर ही जन्म हो गया, चौराहे पर ही पूरा जीवन बीत गया? लेकिन है मनुष्य जीवन, लेकिन स्थिति वैसी ही है जैसी कि एनिमल्स की होती है। तो कहने का भाव है मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन है, ये संगम युग का धीरे तुल्य जीवन है। जब हमें स्वयं का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, तो हमें पीछे मुड़कर या पीछे रुक कर नहीं देखना है, आगे ही आगे समझ को यूज करते हुए आगे ही आगे इस लाइफ में बढ़ते जाना है। तो अभी हमारा कर्म सिद्धांत का जो कल थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, हमने आज उसको पूरे अच्छे से समझ लिया है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर उसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे। और आज हम बात करेंगे बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व की। हम लोग रोज पिछले 7 दिनों से, आज 7वां दिन है, 8वां दिन है, हम पिछले इतने दिनों से हर रोज अपना समय निकालते हैं, है ना, पूरे दिन से टाइम मैनेज करते हैं कि कैसे इस टाइम पर हम सभी फिर से एक साथ कनेक्ट हो। तो एक बात और एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना हम सबके लिए अत्यधिक आवश्यक है कि जिनकी वजह से आज हम, जिनके त्याग तपस्या कुर्बानी की वजह से आज हम सभी इस ज्ञान का फायदा ले रहे हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमने ये जाना कि शिव बाबा ये सारा ज्ञान दे रहे हैं, हम यही कहते हैं ना रोज कि परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया है, परमात्मा शिव बाबा जो हैं वो हमें ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ सोचने की आती है, हो सकता है आप सबने भी इस पर सोचा होगा, हम सब आत्माएं निराकार ज्योति स्वरूप है ना, लेकिन हमारे साथ में तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हमें ये पंच तत्वों से मिलकर के बना शरीर मिला है। आत्मा यहाँ है, इस मुख से बोल भी रही है, इन कानों से सुन भी रही है, इन आंखों से देख भी रही है ना, वी आर एबल टू डू एवरीथिंग, है ना, हम कुछ कर्म भी कर पा रहे हैं, हम अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। लेकिन शिव बाबा वो कैसे हैं, शिव बाबा कैसे हैं? शिव बाबा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, क्या उनको हमारे तरह कोई शरीर है, क्या उनको हमारे तरह कोई शरीर है? नहीं है। तो अभी शिव बाबा ने इतना सारा ज्ञान जो हम पिछले 7 दिन से सुनते आ रहे हैं और आगे भी हम सुनते ही रहने वाले हैं महीनों तक, और शायद सारा जीवन हम सुनते ही रहने वाले हैं, ये सारा ज्ञान दिया कैसे शिव बाबा ने? फिर भी हमारे पास तो मुख है ना, हमने सब बोल लिया, सुन भी लिया, आया कैसे ये सारा ज्ञान? तो जैसे आत्मा को ये शरीर चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही शिव बाबा को भी तो कोई शरीर चाहिए होगा ना अपनी सारी बातें एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किसके द्वारा एक्सप्रेस करेंगे? देखिए राजस्थान के भी बहुत से भाई बहने इस कोर्स में जुड़े होंगे, राजस्थान यूपी में तो बहुत कॉमन है ये सभी बातें, कि कभी कभी हम सुनते हैं कि कोई मनुष्य है उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा आ जाती है, है ना, फिर कहते हैं पितर आए हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमारे घर के देवता हैं, ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं यहाँ पर। और उसमें क्या दिखाते हैं वो, कि कोई और आत्मा जिसने कुछ समय पहले शरीर छोड़ दिया था, हमारे ही परिवार के कोई संबंधी थे, वो अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, परंतु अब वो इनके उस दूसरे व्यक्ति के शरीर में आकर के अपनी जो अधूरी बातें रहती है उनको आके कंप्लीट करते हैं। ऐसा आप में से कईयों ने सुना होगा, तो उसको कहते हैं पर काया प्रवेश। ये एग्जाम्पल यहाँ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जैसे एक साधारण मनुष्य आत्मा भी अपना मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए किसी और मनुष्य के तन को ओवरटेक करके वहां आकर के उसमें आकर के अपना मैसेज दे सकती है, तो क्या परमात्मा किसी मनुष्य के तन का आधार लेकर के ये सारा राजयोग का ज्ञान हमें नहीं शेयर कर सकते? क्या विचार है आप? जब एक साधारण मनुष्य आत्मा, हम और आप जैसे, वो ही जब किसी और के शरीर में आकर के अपनी सारी बातें शेयर कर लेती हैं, तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो इस प्रकृति का, जो इस पंच तत्वों से मिलकर बनी प्रकृति का मालिक है, क्या वो किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके अपना ज्ञान नहीं दे सकते? क्या विचार? परमात्मा भी इस सृष्टि पर पर काया प्रवेश करते हैं, प्रकृति के पंच तत्वों को अधीन करके पर काया प्रवेश कर किसी दूसरे मनुष्य के तन में प्रवेश करके राजयोग का ज्ञान हम सभी आत्माओं को देते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कौन थे, वो कौन भाग्यशाली आत्मा है, वो कौन ऐसी श्रेष्ठ और महान आत्मा है इस सृष्टि पर जिसके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया। तो आज हम एक कहानी बहुत शॉर्ट में, कहानी तो इतनी है, हमारी संस्था की जो दादियां हैं और बड़ी दीदियां हैं अगर हम उनसे वो कहानी सुने तो उनको तो कई घंटे, कई हफ्ते और कई महीने लग जाएं वो कहानियां सुनाने में कि वो व्यक्तित्व कौन थे। लेकिन यहाँ हम बहुत शॉर्ट में, इसके बाद हम आपको कुछ वीडियो लिंक्स भी शेयर करेंगे जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जीवन कहानी देख पाएंगे एक मूवी के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। लेकिन यहाँ अभी हम बहुत शॉर्ट में उस बात को, उस भाव को समझने की कोशिश करेंगे कि वो व्यक्तित्व कौन थे। ये बात है दादा लेखराज की, जिनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में सिंध कराची के इलाके में हुआ था और एक सिंधी परिवार में दादा लेखराज का जन्म हुआ था। और इसके बाद ये जो फोटो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 1920 का फोटो है दादा लेखराज का। और दादा लेखराज का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, साधारण परिवार में हुआ। और इनके माता पिता ने भी बहुत छोटी उम्र में, माता ने तो बहुत जब ही छोटे थे तभी शरीर छोड़ दिया और जो पिताजी थे वो एक स्कूल के हेडमास्टर थे, पर बहुत ही जब दादा लेखराज की उम्र छोटी तो ही उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था। फिर क्योंकि अकेले रह गए थे अब तो उन्होंने अपने जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, जैसे ऐसा दुनिया में यही सिस्टम है, तो उन्होंने भी अपने चाचा के साथ में उनकी जो भी ग्रोसरी शॉप थी, किराने की, गेहूं का व्यापार था उनका, उनके साथ कुछ वर्क करना शुरू किया। पर ये जो बालक था दादा लेखराज, वैसे नाम तो लेखराज था पर सिंधी भाषा में बड़े भाई को दादा भी बोलते हैं, भारत में कई भाषाओं में बोलते हैं, बंगाल में जाएंगे तो भी बड़े भाई को दादा बोलेंगे, महाराष्ट्र में भी बोलते हैं, तो ऐसे वहां भी लोग उनको प्यार से फिर दादा लेखराज या लक्की बाबू कहते थे। और जो ये बालक थे लेखराज, इनके जीवन में बहुत ही जिसको कहे ना भक्ति भाव, ईश्वर के, श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। उम्र छोटी थी पर संस्कार बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत दिव्य संस्कार थे, दैवी गुणों से संपन्न संस्कार थे, व्यवहार में सरलता, सौम्यता, दान की प्रवृत्ति, ईश्वर के प्रति आस्था, भक्ति भाव, पूजा पाठ, ये सब कुछ करना इनका डेली रूटीन था। तो जब ये अपने चाचा के साथ बिजनेस किया करते थे ना गेहूं का, तो उनके शॉप पर बैठा करते थे, तो कई लोग उनके पास कुछ कुछ मांगने नहीं आ जाते दुकानों पर भी, तो जो भी कुछ मांगने आता ना वो उनको अच्छे से खुले हाथ से उसको वहां से उठा करके और अनाज दे देते थे। और वो चाचा जी देखते तो उनको तो अच्छा नहीं लगता कि भैया तो मेरे को एक दिन खाली करके ही छोड़ेगा, इतना इतना डोनेट करेगा, तो उन्होंने उनको कुछ कह दिया। तो उसी दिन से फिर बाबा ने डिसाइड किया कि फिर मुझे अपना ही, क्योंकि अगर मुझे कुछ डोनेट करना है तो डेफिनेटली आई हैव टू अर्न ऑन माई ओन, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपना ही कारोबार शुरू करना है। तो फिर वो वहां से मुंबई गए और वहां जाकर के उन्होंने ज्वेलरी का बिजनेस सीखा और फिर आकर के अपना बिजनेस शुरू किया। जो दादा लेखराज थे इनका बिजनेस बहुत सारी जगह पर था, उधर तो था ही कराची, हैदराबाद में तो था ही, इसके अलावा कलकत्ता में भी उनका बिजनेस था। और उसके अलावा उनके जो, अब ज्वेलरी कौन खरीदेगा, ज्वेलरी कौन खरीदे, कस्टमर्स कौन होंगे, कौन होंगे ज्वेलरी शॉप के कस्टमर्स, कोई साधारण लोग तो नहीं खरीदेंगे ना ज्वेलरी शॉप के कस्टमर्स। नरेंद्रनाथ जी लिखते अमीर लोग खरीदेंगे या कोई राजा महाराजा खरीदेंगे, बड़े बड़े जो साहूकार होंगे वो खरीदेंगे। तो जो बाबा के जो कस्टमर्स थे वो भी सब अधिकतर राजा महाराजाएं होते थे। इधर अगर हम राजस्थान में देखें तो बीकानेर के महाराजा, उदयपुर के महाराजा और विदेशों के भी कई बड़े बड़े लोग और राजाएं उनसे डील किया करते थे, तो जैसे नेपाल के राजा भी। तो ऐसे कई जगह बाबा का, क्योंकि बिजनेस ही ज्वेलरी का था तो वो कई जगह, क्योंकि बड़े घर के जो लोग होते हैं तो शॉप्स पे नहीं जाएंगे ना खरीदने, तो जो वो दादा लेखराज थे ये सबके पास जाते थे, महलों में राजाओं के पास साथ इनका उठना बैठना था और उनको ज्वेलरी पसंद करवाना और सेल करना, ये सब इनका रूटीन था। और जो दादा लेखराज थे ना उनके व्यक्तित्व में कुछ शुरू से ही ऐसी दिव्यता थी, क्योंकि श्री नारायण के अनन्य भक्त भी थे और संस्कार भी बहुत दिव्य, दान पुण्य के और स्वभाव बहुत सरल सादा जीवन, और जहाँ जिस इलाके में ही रहते थे सिंध में, सिंधी परिवार के थे, तो वहां तो आप देखिए उस समय पर, ये बात हम कर रहे हैं 1920s की 30s की 40s की, एक ऐसा जमाना था कि सब लोग, बहुत सारे लोग विदेशों में गए कुछ अर्न करने के लिए, कम्युनिटी के लोग, और बहुत हाई फाई लाइफ स्टाइल जिया करते थे, क्योंकि बाबा भी भाई ज्वेलरी का बिजनेस वाला तो कैसा होगा ना, कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं होगा। तो बहुत ऐसी फैमिलीज थी जहां पर खाने पीने में भी नॉन वेजिटेरियन, शराब, मांस, मदिरा, ये सब उस इलाके में, उस कम्युनिटी में बहुत कॉमन थे। परंतु इन सबके बीच में भी बाबा का जो, दादा लेखराज का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही डिफरेंट था, इसलिए दुनिया उन्हें बहुत सम्मान भी देती थी। और जब ये एक बार तो कई बार तो उनको राजाएं और महाराजा ही कहते थे कि लक्की बाबू, प्यार से उन्हें लोग कहते थे लक्की बाबू। और उनकी हेल्थ हाइट भी बहुत अच्छे, कद और काठी बाबा की दोनों ही बहुत अच्छी थी। उन्हें कई बार राजा महाराजा ही कहा करते थे कि भगवान से भी भूल हो गई है, राजा तो आपको बनाना चाहिए था, गलती से हमें बना दिया। क्योंकि उनके संस्कार और दिव्यता इतनी थी। और एक बार, कई बार ऐसा भी होता था कि बाबा जब महलों में जाते थे अपनी ज्वेलरी दिखाने के लिए, जो महारानी होती थी, जो रानी होती थी, वो अपनी बहू और बेटियों को वहां ही बुला लिया करती थी और उनको डायरेक्ट एंट्री की परमिशन होती थी कि नहीं, लक्की बाबू तो कभी भी आकर के अपना सामान सेल कर सकते, और उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता था या चिंता नहीं होती थी कि इस व्यक्ति को कैसे हम अपनी बहू और बेटियों के बीच में बुलाएं। इन सब के साथ साथ ही, क्योंकि ये सब भी चल रहा था और इसी बीच में जो लक्खीराज बाबू थे, इनका विवाह भी हुआ, इनके 5 बच्चे भी थे और पूरा एक अच्छा गृहस्थ जीवन जी रहे थे। और श्री नारायण के अनन्य भक्ति के साथ साथ वो हर दिन, उन्होंने अपना नियम बनाया हुआ था, हर दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ वो हर सुबह अवश्य करते थे। चाहे कोई क्लाइंट आ जाए, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, उसको बोलते थे अभी वेट करिए, अभी मेरा पाठ का टाइम हो रहा है, मैं ये करके ही करूंगा। और जब रिश्ता बड़े लोगों के साथ होता है तो हम खुद भी जाते हैं और वो भी फिर हमारे यहाँ आते हैं। तो बाबा के घर में भी कभी कोई विवाह हुआ बच्चों का, या कोई पोते पोतियों का कभी कुछ जन्मदिन मनाया जाए, या बाबा के घर में कोई गेट टुगेदर होता था, तो ये बड़े बड़े लोग आते थे। और क्योंकि अब बाबा का जीवन तो बहुत सात्विक था, तो पार्टीज में ना तो कोई नॉन वेजिटेरियन फूड हुआ करता था, ना ही कोई मांस मदिरा, तो लोग कहते थे लक्की बाबू आपकी तो पार्टी फीकी रह गई, लोग ऐसे मुंह पर ही बोल देते थे। तो बाबा कहते थे ठीक है, चाहे फीकी रह गई, लेकिन हम आपके लिए अपने नियमों और अपने सिद्धांतों को तो नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। वो आप अपने वहां अपने स्थान पर जाकर के भी वो सब चीजें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बाबा का जीवन बहुत ही दिव्य था और ईश्वर के प्रति जो उनकी इतनी आस्था थी, इतना गहन विश्वास था, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए ईश्वर को पाने के लिए। एक गुरु किए, उनसे ईश्वर के बारे में जाना, फिर दूसरे किए, संतुष्टि नहीं हुई तो खोज थी उनकी बुद्धि में एक। और ऐसे करते करते जब दादा लेखराज लगभग 60 वर्ष की उम्र के हुए, तो उनके घर में एक सत्संग चल रहा था। और घर में मना वो मुंबई गए हुए थे, उनके ही एक गुरुजी वहां पर आए हुए थे और उनके मुंबई में जो उनका घर था वहां पर सत्संग चल रहा था। और दादा लेखराज को एकदम से ऐसा लगा, जबकि भक्ति में तो कितना कहते हैं ना लोग के गुरु अगर सामने हो तो फिर गुरु का डिसरेस्पेक्ट या गुरु को छोड़ करके मनुष्य कहीं भी उठ के नहीं जाता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसी विचित्र घटना हुई कि बाबा बैठे तो थे सत्संग सभा में, लेकिन उनको बैठे बैठे ही कुछ ऐसा इंस्पिरेशन आया, कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वो उठ के गए, कुछ उनको हलचल हुई अंदर में, तो वो गुरुजी की सभा में से उठ करके दूसरे रूम में चले गए। पहले तो जो उनकी वाइफ थी जिनका नाम था जसोदा, उन्होंने भी जाते हुए देखा। फिर जो उनके बेटे की बहू थी उसने कहा अच्छा आप बैठो, मैं जाकर के देखती हूँ। तो उसने जब जाकर के उन्होंने बाबा को फॉलो किया एंड शी वॉज सरप्राइज कि भाई वो क्यों उठे, क्योंकि गुरुजी की क्लास में से तो कोई नहीं उठता, आज ऐसा क्या हुआ, तबीयत ठीक है कि नहीं है, ऐसी क्या बात है। तो जब उन्होंने वहां जाकर के देखा तो वो गेट पर ही रुक गई और देखा कि बाबा तो जैसे एकदम किसी और स्थिति में मगन है और बाबा के सामने और पूरे रूम में जैसे कोई स्पेशल डिवाइन लाइट, रेड कलर की लाइट फैल गई हो और बाबा की आंखों में से भी कोई रोशनी निकल रही हो और पूरा चेहरा जैसे बल्ब की तरह जल उठा हो, तो वो देखती रही बाहर खड़ी होकर के। और कुछ ही क्षणों में उनको जैसे कुछ आवाज बाबा के मुख से निकलती हुई सुनाई दी, दादा लेखराज के मुख से, और उसमें तीन शब्द थे। पहला जो तीन लाइन्स थी वो ये थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इस लाइन का अर्थ है, मैं ज्ञान स्वरूप निराकार शिव हूँ, मैं प्रकाश रूप शिव हूँ और मैं आनंद रूप शिव हूँ। और कुछ कुछ क्षणों के लिए अनुभव चला और ऐसा लगा कि जैसे दादा लेखराज के मुख से ये आवाज सुनाई दी है, और कुछ ही क्षणों में ऐसा लगा कि जैसे कोई वहां से चला गया, कोई लाइट थी जो आई थी और वो चली गई। और जब ये अनुभव समाप्त हुआ तो जो दादा लेखराज थे वो खुद भी सोचने लगे कि कौन आया था, हु केम टू मी। उनको लगा कि कोई तो आया था, क्योंकि कुछ ऐसा था, ऐसा अनुभव हुआ उनको कि कोई शक्ति थी, कोई एनर्जी थी जो मुझे कुछ अनुभव करा के गई है। पर उनको कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, पर वो अनुभव जो था उनको लगा शायद गुरुजी की कृपा हुई है, तो गुरुजी ने ये अनुभव मुझे कराया है। तो वो गुरुजी से उन्होंने, जो गुरुजी आए हुए थे उनको जाकर के फिर से उन्होंने बात शेयर करके समझाने की, ये जानने की कोशिश की कि ये क्या था। पर जैसे उन्होंने कुछ बोला तो गुरुजी के एक्सप्रेशन से उनको समझ आया कि ये तो कुछ और ही बात है। तो फिर उनको ऐसा लगा कि अब मुझे थोड़ा समय साइलेंस में बैठ के इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये क्या अनुभव हुआ है। तो वहां से फिर वो अपने, उनका, उनके एक मित्र रहा करते थे बनारस में, वो वहां पर जाकर के कुछ दिन, क्योंकि उनका बड़ा सा बंगला और गार्डन बाग बगीचे थे, तो बाबा ने कहा मैं थोड़े दिन वहां जाकर एकांत में समय बिताता हूँ और मुझे ये जानना है कि ये क्या हुआ था। तो जब बाबा वहां पर गए तो उनको और भी कुछ साक्षात्कार हुए, कुछ डिवाइन विजन्स उनको मिले जीवन में। उसमें उन्होंने देखा, एक उनको साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, जिसमें उनको विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, और उसमें एक मैसेज मिला, तत्त्वम तुम्हें ऐसा बनना है, ये तुम्हारा ही स्वरूप है, इसका अर्थ है तुम ये, तुम हो ये तुम्हारा ही स्वरूप है। फिर उनको समझ कुछ नहीं आया, परंतु ठीक है। फिर कुछ दिनों में उनको एक दूसरा साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार ने उनको बहुत हिला दिया अंदर तक। वो साक्षात्कार था इस कलियुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार। उनको दिखाई दिया कि ये सृष्टि खत्म हो रही है, कहीं से ज्वालामुखी फट रहे हैं तो कहीं से एटॉमिक बॉम्ब फट रहे हैं और संपूर्ण सृष्टि विनाश हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ये सृष्टि कलयुगी दुनिया खत्म होती जा रही है। जब वो ये दृश्य देख रहे थे, जब वो ये साक्षात्कार कर रहे थे, तो उनकी आंखों से जैसे आंसू की धारा बही जा रही थी और वो कह रहे थे बस प्रभु बस, अब नहीं और नहीं देखना, जबकि दुनिया का विनाश नाखों से होते हुए देखना बहुत ही उनके लिए एक जिसको कहते हैं ना हिला देने वाला अनुभव था। तो अब उनका मन, जब से उनको ये साक्षात्कार हुआ तो उनका मन और भी दुनिया से उपराम हो गया, क्योंकि उनको लगने लगा है तो सब विनाश होने वाला है। और इसके कुछ ही दिनों बाद उनको फिर एक और साक्षात्कार हुआ और वो तीसरा साक्षात्कार था सत्ययुगी दुनिया का साक्षात्कार। उन्होंने देखा कि आत्माएं परम धाम से छोटे 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 सितारे इस सृष्टि पर आ रहे हैं और आकर के देवी देवताओं के रूप में आते बनते जा रहे हैं, देवी देवता के रूप में सृष्टि पर आते जा रहे हैं, और चारों ओर स्वर्णिम दुनिया है, सोने के महल है और इतनी संपूर्णता है जैसे कि घी दूध की नदियां बह रही है, चारों ओर इतना सुंदर वातावरण, सुंदर प्रकृति। और जब वो ये साक्षात्कार हो रहा था तभी उनको एक मैसेज ये भी मिला कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, जैसे कि उनको अनुभव हुआ कि आकाशवाणी से ये आवाज आ रही है कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तो एक साधारण मनुष्य जिसको एक तरफ विनाश का साक्षात्कार हो रहा है इस कलयुगी दुनिया के, एक तरफ नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार हो रहा है, एक तरफ विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो रहा है, कहीं वो ये सुन रहे हैं कि दुनिया विनाश होनी है, कहीं उन्हें लग रहा है कि तुम्हें ऐसा बनना है, कहीं उन्हें साक्षात्कार हो रहा है कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। अभी बाबा सोचने लगे इसलिए उन्होंने और समय एकांत के लिए भी निकाला, और अब ये सब कुछ होने के बाद में उनको जैसे अंदर से इंस्पिरेशन आई, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा व्यापार था हीरे जवाहरातों का, जैसे कि हमने बात की ना कि राजाओं महाराजाओं के साथ भी डील हुआ करती थी। तो अब उनका मन इस सांसारिक बातों से, इस दुनिया से उठने लगा, उनको लगा अब मुझे कुछ और करना है। और लगभग ये बात है जब 1936 के आसपास की, जब उनकी शरीर की उम्र 60 वर्ष के करीब थी, तो उन्होंने वो घर गए और उन्होंने जो भी उनका कलकत्ते में उनका वो था पार्टनर था उसके साथ में, उसको कहा कि भाई अब मुझे ये कार्य नहीं करना है, मुझे तो कुछ और करना है। बिकॉज उनको इशारा मिल गया था, उनको वो साक्षात्कार हो गया था कि अब मुझे कुछ और करना है। तो उन्होंने अपने पार्टनर को कहा कि भैया अब आपको जो भी हिसाब किताब लगता है ना, आप ही वकील को बुला करके कर लो, अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। और वो जो पार्टनर था उसको तो सुन करके बड़ा डिस्टर्बेंस फील हुआ कि भाई दादा की वजह से ही तो बिजनेस चल रहा था, अभी ये चले जाएंगे तो कैसा होगा, सारे क्लाइंट्स सारे राजाओं महाराजाओं में तो इनकी पैट है। लेकिन बाबा ने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे देखना भी नहीं है क्या हिसाब किताब है, आपको जो ठीक लगता है वो करके मुझे दे दो, अब मुझे इस धन से ईश्वरीय कार्य करना है, कोई और कार्य करना है। फिर जब बाबा घर लौटे तो रोज रोज, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी प्रवृत्ति के थे, तो उनके पास उनके परिवार के सभी लोग बैठ करके सुनने लगे, कुछ 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 बातें उनके मुख से निकलने लगी, और धीरे 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 करके एक पूरा बड़ा संगठन तैयार हो गया। बहुत सारे लोग उस सत्संग में आने लगे और धीरे 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 करके अड़ोस के पड़ोस के, पहले तो परिवार के ही सुनते थे, फिर और लोग भी आकर के जुड़ने ही लगे, और सबको बहुत दिव्य अनुभव भी होने लगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आ रहे हैं और सुन रहे हैं, जब वो लोग सत्संग के लिए आते थे तो किसी को तो उस सत्संग में बैठे बैठे ही सत्युग का साक्षात्कार होता था, किसी को राधे का होता था, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो बहुत दिव्य अनुभव सबको होने लगे और चारों तरफ उस इलाके में, सिंध कराची के इलाके में बहुत शोर मच गया कि कोई निराला ही सत्संग है, जो भी सत्संग में जाते उनको अलग अलग साक्षात्कार होते हैं। और इसी सत्संग में एक 16 साल की कन्या आया करती थी जिसका नाम था राधे। वो भी जब, क्योंकि उनके भी घर में कई सिचुएशंस थी, उनके पिताजी ने अभी अभी शरीर छोड़ा था तो वो भी बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन जैसे ही वो कन्या इस सत्संग में आई, दुनिया के हिसाब से वो बहुत इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई जब स्कूल में भी बहुत डांस और गीत संगीत सब में बहुत अच्छी थी और फैशनेबल लड़की थी उस समय की, लेकिन जब वो इधर आई इस सत्संग में, तो इस सत्संग में आने के बाद में उनको भी बहुत अच्छे दिव्य अनुभव होने लगे। और जब ये सत्संग शुरू होता रोज दादा लेखराज के मुख से जो भी बातें निकलती, तो वो जो थी जो वो थी राधे जो थी, शी वॉज लाइक द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना, जितने भी लोग क्लास में आया करते थे उन सभी में जिसको कहें ना बेस्ट स्टूडेंट या इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। और धीरे धीरे वो जब सत्संग शुरू होता था तो वो रोज ओम की ध्वनि लगाया करती थी, ओम, और जैसे ही ये ध्वनि लगती थी, ओम की धुन लगाते थे, ओम ध्वनि करते थे, तो जो भी लोग सत्संग में होते थे सभी लोग जैसे ध्यान मग्न हो जाते थे। तो उस कन्या का नाम रख दिया, मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है ना हम जैसे कर्म करते हैं, तो उनका नाम हो गया ओम राधे, और ये सत्संग फेमस हो गया ओम मंडली के नाम से। और ओम मंडली के सत्संग की चारों तरफ जैसे धूम मच गई, हर घर में पता हो गया अरे वहां ऐसा होता है, वहां जाते हैं तो कृष्ण का साक्षात्कार होता है, वहां जाते हैं तो ये होता है, ऐसी बातें चारों ओर होने लगी। और जो लोग उस सत्संग में आते थे उनके जीवन में बहुत सात्विकता आने लगी, उनका व्यवहार श्रेष्ठ होता गया, उनका मन और बुद्धि एकदम शांत होते गए, उनका जीवन ही बदलने लगा था। तो अब धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सत्संग का नामाचार भी चारों तरफ होने लगा था, तो कई तरह की बातें भी बीच बीच में आई। लेकिन अब ये हो क्या रहा था, ये क्या था, ये परमात्मा शिव जो सर्वशक्तिवान है, जो निराकार है, जिनके बारे में हमने परमात्मा के परिचय में जाना, उस परमात्मा शिव ने अब इस दादा लेखराज के तन को क्या कर लिया था, एक तरह से अक्वायर कर लिया था उस तन के द्वारा। अब वो अपना कार्य कर रहे थे, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा था, दिव्य साक्षात्कार होना और ये जो जो भी सब हो रहा था, ये सब कैसे हुआ, ये सब दादा लेखराज का नहीं था कार्य, ये सब था परमात्मा शिव का कार्य जो दादा लेखराज के द्वारा वो करवा रहे थे। तो फिर शिव बाबा ने जो शिव बाबा ने ब्रह्मातन में प्रवेश किया उन्होंने उसका नाम रखा शिव बाबा ने दादा लेखराज का नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि दादा लेखराज ने जब उनको ये सारे दिव्य अनुभव हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनको इस जीवन में इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, ईश्वरीय सेवा शिव बाबा के डायरेक्शन के अनुसार करनी है, तो उनके पास जो भी चल और अचल संपत्ति थी वो सारी उन्होंने माताओं और बहनों की, 8 माताओं बहनों की एक कमेटी बनाई और उसके नाम कर दी। और उसके बाद इतिहास में, ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में कभी भी उन्होंने उस धन को हाथ नहीं लगाया, जो भी कुछ कराया वो उन माताओं बहनों से ही करवाया। आगे का जो भी कार्य संस्था का चलाओ, वी कैन से कि दादा के पास, दादा लेखराज और उनको शिव बाबा ने जो ब्रह्मा नाम दिया, ब्रह्मा बाबा के पास में जो भी कुछ था वो सारा इस संस्था का एक तरह से फाउंडेशन, जिसको आजकल कहते हैं ना दुनिया में सीड मनी, जहाँ इंक्यूबेशन और स्टार्टअप की बात होती है तो कहते हैं सीड मनी, तो वो जो सीड मनी था, चाहे तन था, उन्होंने अपना तन शिव बाबा को दिया, अपना मन पूरी तरीके से उस कार्य को आगे बढ़ाया और अपना धन जो भी था, चल अचल संपत्ति, वो सब इस कार्य के लिए समर्पित कर दी। और इसी सबके, इन्हीं सब बातों के कारण शिव बाबा ने उस आत्मा को दिव्य नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और इसी नाम से आप देखेंगे संस्था का भी नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा क्यों? क्योंकि शिव बाबा सर्व आत्माओं के पिता है, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के पिता है। शिव ने जिनमें प्रवेश किया, जिसके मुख से अपना ये ज्ञान दिया, और जिसने भी अपना 60 साल की उम्र में, तो हम कहाँ रिटायरमेंट की सोचने के, कुछ नहीं करेंगे, उस उम्र में जिस मनुष्य आत्मा ने अपना तन मन और धन सब उस ईश्वर पर न्योछावर कर दिया, क्योंकि उनको ये अनुभव हुआ कि परमात्मा इस सृष्टि पर नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आए हैं, उस श्रेष्ठ मानव का, आदि मानव को उन्होंने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और इसके आगे आता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कुमारी क्यों? क्योंकि परमात्मा शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने आकर के जो ज्ञान, ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान उच्चारा, वो उसका एक तरह से कहना, जिसको वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, की ये ज्ञान अब सारी दुनिया में फैले, हर एक मनुष्य आत्मा को परमात्मा का परिचय मिले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एक तरह से, वो ज्ञान का कलश माताओं और बहनों के सिर पे रखा। ये वो समय है हमारे इतिहास में जबकि माताओं और बहनों की क्या क्या स्थिति थी इस दुनिया में। आज तो कितनी उन्नति कर ली, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर माताएं बहने नहीं पहुंची हो, पर वो समय आज से 85 साल पहले की बात, जब माताएं और बहने तो सिर्फ घर में ही रहना उनका जीवन हुआ करता था और घर के ही कार्य और विषय वासनाओं के लिए ही उन्हें समझा जाता था। ऐसे समय पर परमात्मा ने उस नारी को शक्ति बनाया और इसीलिए आज भी ब्रह्मा कुमारी संस्था की तब से लेकर के आज तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही हैं वो भी माताएं बहने ही रही हैं। पहले जो ओम राधे थी, फिर उनको बाबा ने, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे थे माँ के समान, वो माँ के समान सबकी पालना करती थी, सबको ज्ञान और योग की शिक्षा देती थी, तो सभी उन्हें मम्मा कहने लगे। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, उम्र तो छोटी थी, 16 वर्ष की ही थी, लेकिन धीरे धीरे कम उम्र में ही उनके अंदर ऐसे संस्कार आ गए जिससे सब उन्हें माँ कहने लगे, मम्मा कहने लगे। वो जगदम्बा सरस्वती के नाम से फेमस हुई और इस संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका रही। 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कोई भी भाई बहने, कितने भी नए होंगे, पहली बार संस्था से जुड़े होंगे, पर दादी प्रकाशमणि का नाम हम सभी ने सुना होगा। दादी प्रकाशमणि ने संस्था को 1965 से लेकर के 2007 तक लीड किया और उनकी लीडरशिप में हजारों सेवा केंद्र पूरे विश्व में खोले गए। और 2007 में जब दादी प्रकाशमणि ने शरीर छोड़ा तो हमारी दादी जानकी, जिनको भी आप सभी जानते होंगे, उनकी भी कई विशेषताएं हैं, फिर दादी गुलजार और अभी वर्तमान में आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी इस संस्था की चीफ हैं और वो इसे संभाल रही हैं। परंतु ये जो सारा कारवा चला, ये जो सारी बातें हुई कि शिव बाबा ने दादा लेखराज के तन में प्रवेश किया, उनको प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दिया और ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं ना, देखिए पूरा हमारा कैसे चला है ना, सिलेबस की तरह 7 डेज, पहले हमने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, सिलेबस हर रोज आपको क्विज भी मिलता था ना, हर रोज हमने टेस्ट भी किया, कुछ कुछ नोट्स भी बनाए होंगे किसी ने, और अब हम आज हमने एक तरह से हमारा पूरा जो बेसिक था वो आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और कल एक क्वेश्चन आंसर के बाद हम रोज की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं अपनी। तो ये जैसे ईश्वर का स्थापित किया हुआ विश्वविद्यालय है, जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज है वो तो एक यूनिवर्सिटीज और दूसरी यूनिवर्सिटी दोनों के आपस में सिलेबस सिस्टम कोर्स कंटेंट एवरीथिंग इज डिफरेंट, ये यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफर कर रही है, दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरा ऑफर कर रही है, पर परमात्मा ने जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की है वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, हम सभी भाई बहने भारत के चाहे विदेश के, आजकल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी हेल्प की कि हम सभी हर रोज सेम पढ़ाई पढ़ते हैं और हम सबके लिए वो इक्वली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू बैकग्राउंड से है या कोई जैन है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, तो किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अध्यात्म, ये जो परमात्मा का ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये हर धर्म के लिए, हर धर्म के लिए ये इक्वल है। और जब हमने, अब हम फिर से चलते हैं पीछे की तरफ, कि जब ये सत्संग की शुरुआत हुई थी 1936-37 में, फिर ये सब कुछ हुआ, ओम मंडली के नाम से फेमस हुए, तो ये वहीं चलता रहा और लगभग 14 साल तक एक जो लोग सत्संग में आया करते थे ना, बहुत सारे लोग हो गए धीरे धीरे करके, तो लगभग 350 भाई बहनों का एक ग्रुप बना जिन्होंने कि अपना सर्वस्व समर्पण किया इसके लिए। उनको भी परमात्मा से जैसे जैसे वो सत्संग में जाते थे, जैसे जैसे उन्हें वो समझ आई और जितना उन्होंने दिव्य अनुभव किए, तो उनको भी ये रियलाइज हुआ कि अब हमें भी अपना जीवन इस ही मार्ग पर आगे बढ़ाना है। तो उसमें कुछ परिवार थे जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे थे, कई बच्चे, तो कई तो पूरी फैमिली थी, कई बूढ़े थे, कोई जवान थे, ऐसे करके लगभग 350 भाई बहनों का एक ऐसा ग्रुप बना जिन्होंने की 14 साल तक, तो कहेंगे ना, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान दिया उसको समझा, अपने जीवन में धारण किया और प्रतिदिन योग के अभ्यास से स्वयं को पावन किया। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये उस समय की फोटोज है, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक बोर्डिंग स्कूल भी खोला था, क्योंकि वो जो 350 लोग थे ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, गर्ल्स भी थी तो बॉयज भी थे, अभी तो उनकी शिक्षा ही नहीं हुई थी, तो जो बड़े बच्चे थे वो उन छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हुई, पर सब कुछ इतना आसानी से नहीं हुआ। अगर कुछ डिफरेंट और कुछ अलग होता है तो फिर उसको ऑपोजिशन भी बहुत होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसी कई बातें देखिए, कई लोगों ने, कई समाज के ही लोगों ने वहां धरने भी दिए उन बिल्डिंग्स में जहां ये सब लोग रहा करते थे, वहां पर कईयों ने आग लगाने भी की भी कोशिश की और बहुत कुछ किया, ब्रह्मा बाबा मम्मा को मारने की भी कोशिश की गई, बहुत कुछ किया गया, परंतु ये कार्य तो किसका था, ये कार्य तो उस परमात्मा का था और उसको करना था। सब कुछ होते हुए भी आगे बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, और हम सब तो वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिनके आगे आज कोई ऐसा चैलेंज नहीं था। सोचिए उस समय छोटे छोटे बच्चे, इनको लोगों ने रोक लिया, धूप में खड़े रहे, कई कई घंटों तक अंदर जाने नहीं दिया, ऐसी कई समस्याओं और कई बातों, कई विघ्नों का सामना करते हुए आज ये संस्था यहाँ तक पहुंची है, जो आज संपूर्ण विश्व में हम सभी बैठ करके कोविड टाइम्स में तो स्पेशली हर एक मनुष्य ने रियलाइज कर ही लिया है कि अध्यात्म और मेडिटेशन की हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है। और हमारे पिता परमात्मा को तो ये सब बातें पहले से ही पता थी, अब वो इस समय पर आकर के हमें ज्ञान देते तो कितना डिफिकल्ट होना होता ना। उन्होंने इतने साल पहले ही हमारे लिए सारा फाउंडेशन रेडी करके रखा कि आज जब हमें इस ज्ञान की जरूरत है तो हमें बहुत ईजिली मिल रहा है। 14 साल के बाद, क्योंकि इस बीच में 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया, 1950 में ये सारी संस्था वहां से, पाकिस्तान से, कराची से शिफ्ट होकर के, क्योंकि शिव बाबा ने आदेश दिया कि अब इस ज्ञान को अगर संपूर्ण विश्व में फैलाना है तो फिर भारत में शिफ्ट होना पड़ेगा, और 1950 में कराची से ये सारा का सारा ग्रुप ओखा में, जो बंदरगाह है, समुद्री रास्ते से होते हुए माउंट आबू में, आबू पर्वत पर शिफ्ट हुआ। आप में से कुछ भाई बहने कभी घूमने कभी पिकनिक मनाने माउंट आबू गए भी होंगे, और जो नहीं गए हैं उनको भी जरूर अब तो चांस मिलेगा ही। तो फिर ये सारी संस्था वहां पर सेटल हुई, और 1950 के बाद से ही, क्योंकि अब जो आत्माएं जिन्होंने 14 साल अपने जीवन को तपाया था, नाउ दे आर ऑल रेडी टू सर्व द सोसाइटी। तो बाबा ने उनको आदेश दिया कि अब हर भाई बहन को बाबा ने भारत के अलग 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 कोनों में भेजा, और सेंटर्स की स्थापना ही हुई अलग अलग हर शहर में। पहले एक सेंटर बना, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आज संपूर्ण संसार में लगभग 10,000 से अधिक ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र हैं। 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी भाई बहने लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, शिव बाबा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और हम भी उन महान सौभाग्यशाली आत्माओं में से हैं जिसको इस सृष्टि पर आए भगवान का परिचय मिला, ब्रह्मा बाबा जो हम सबके, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों के बाबा नहीं है ये। चाहे हमें, जैसे हमने कल देखा था ना कर्म सिद्धांत, चाहे मुझे पता हो चाहे नहीं पता हो, मुझ पर एप्लीकेबल है। ऐसे ही परमात्मा, चाहे मैं उन्हें जानूं चाहे नहीं जानूं, वो मेरे पिता हैं ही हैं परमात्मा। ऐसे ही जो ब्रह्मा बाबा है, दादा लेखराज है, ये वही ब्रह्मा है जिसका वेद शास्त्रों में भी गायन है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे कि अभी तो क्योंकि हम सबने ना 7 दिन पूरा कोर्स अटेंड किया है, आज अगर हम ये सारी बातें सुन रहे हैं तो हमें तो समझ आ रही है, एंड वी आर एबल टू कोरिलेट एवरीथिंग। लेकिन अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर कोई भी भाई बहने अगर 10 दिन बाद, सालों बाद कोई देखते हैं, और जब वो सिर्फ एक सेशन को सुनते हैं विदाउट लिसनिंग टू द प्रीवियस 7 सेशन, तो कई बार फिर ऐसा लगता है कि ये क्या बातें हो रही है। लेकिन क्योंकि इसीलिए राजयोग मेडिटेशन में आप जब भी ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर पर जाते हैं ना, तो बहन जी कहती है आपने 7 दिन का कोर्स किया है, फिर अच्छा आप बोलेंगे हमने ऑनलाइन किया, फिर भी वो आपको एक बार बोलेंगे अच्छा हम ना एक बार फिर से ऑफलाइन में ना 2-3 दिन में थोड़ा सा रीकैप और रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आप में से भी जो भी भाई बहने सेंटर पर जाएं और उनको ऐसा ऑफर मिले कि एक बार फिर से हम ऑफलाइन कर लेते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जरूर करिए। अच्छे से करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ऐसे नहीं सोचना हमने तो ऑनलाइन कर लिया ना, अभी हमको नेक्स्ट लेवल पर जाना है ना, तो हमको आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसे ये संस्था चारों तरफ फैली। अब क्या हुआ, 1969 में, 18 जनवरी 1969 को, क्योंकि हमने देखा ना 1936 में तो ब्रह्मा बाबा की एज ऑलरेडी 60 इयर्स की थी, तो 1969 तक ही वाज 93 इयर्स ओल्ड, और 33 साल उन्होंने अपना तन मन धन सब ईश्वर के कार्य में लगाया। और 18 जनवरी तो भौतिक शरीर है ना, इसे तो एक दिन त्यागना ही पड़ेगा। तो 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपनी पार्थिव देह का त्याग किया। और इस बीच में शिव बाबा के मुख से, तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर किताब है, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। हमने तो उस जीवन कहानी का ना शायद तो कहना प्रीफेस भी अभी पूरा, वो जो आगे आती है ना प्रस्तावना, वो भी हम तो इतने कम समय में पूरी नहीं सुन पाए हैं, शेयर नहीं कर पाए हैं। परंतु अगर आप सभी के नजदीक में जो भी सेंटर है, आप वहां से वो बुक अवश्य लेकर आइए, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। इसके 2 पार्ट हैं। ऐसे ही अंग्रेजी में ये किताब आदि देव के नाम से आती है, आपको अपने नजदीकी सेंटर पे अवश्य मिलेगी। आप जाकर के उस बुक को जरूर लीजिए और उसको पढ़ के देखिए। बहुत कुछ पढ़ा है ना हम सबने जिंदगी में, कई प्रकार की किताबें, और कितने घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाए। एक बुक और कोशिश करके हम पढ़ें ताकि हम डिटेल में जान सके कि क्यों परमात्मा ने उस शरीर में ही उस मनुष्य को ही चूज किया। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे भाई बहनों के मन में आता है, वाई ओनली ही। बहुत सारे भक्त और थे दुनिया में, ये भी थे, वो भी थे, ऐसे भी थे, वैसे भी थे, उनको ही क्यों चूज किया। तो उसके पीछे के बहुत सारे आंसर्स हम सभी को उस बुक में मिलेंगे। आपके साथ कुछ वीडियो लिंक्स भी शेयर किए जाएंगे, आप उनको भी जरूर देखिएगा। पर मेन बात एक और है यहाँ पर जानने की, कि जो दादा लेखराज के मुख से, ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ने जब भारत में आए, और धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज धीरे धीरे डिस्क्लोज होती है ना, अभी हमको भी पूरा कॉन्सेप्ट समझने में 7-8 दिन लग गए। ऐसे ही जीरो से, अब सोचिए, अभी तो हमको पता था कि शिव बाबा ने क्या सुनाया, तो हमको सिर्फ समझने में 2 दिन लगे आत्मा के कॉन्सेप्ट को। लेकिन आत्मा का कॉन्सेप्ट पहली बार ही जब सुना था तो कितना समय उसमें लगा होगा, तो बहुत सारा समय लगा। उसके बाद शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो महावाक्य उच्चारण किए, ईश्वरीय वाणी उच्चारण की, उसको कहते हैं हम ईश्वरीय मुरली, ज्ञान की मुरली। तो ये मुरली क्या है, इसके बारे में हम लेटर ऑन सेशंस में बात भी करेंगे। और हम हर दिन जो हम रोज बात करते हैं ना, वी विल कंटिन्यू दिस स्पिरिचुअल स्टडी फॉर नेक्स्ट वन मंथ, कम से कम कंपल्सरीली हम सब अगले एक महीने इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो उस एक महीने में अब हम रोज धीरे 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 मुरली क्या है, उसमें क्या क्या होता है, क्यों मुरली सुननी चाहिए, वो सभी बातें हम धीरे 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 समझते भी जाएंगे, जीवन में अनुभव भी करते जाएंगे। और कुछ डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो अब तो हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन शिव बाबा से शुरू हो चुका है। अब देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडिएटर। अब हम कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो अब हम डायरेक्ट भी शिव बाबा को बोल सकते हैं ना कि बाबा मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। और आप सब अनुभव करेंगे कि हम जैसे जैसे आगे मुरली की ओर बढ़ेंगे, हमारे कई प्रश्नों का समाधान उस ज्ञान की मुरली से ही मिलता जाएगा। तो 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने इस देह का त्याग किया, उसके बाद भी क्योंकि शिव बाबा का जो प्रोजेक्ट था सत्ययुगी दुनिया की स्थापना, वो प्रोजेक्ट तो अभी तक चल रहा है, वो प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यूड है। उसके बाद एक अलग तरीके से ये सारा कारोबार चला, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दो आत्माएं हो गई, एक शिव और एक परमात्मा और एक अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा। तो वो दोनों आत्माओं ने अभी दादी गुलजार के तन में, हमारी आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी जिन्हीं का निक नेम भी है दादी गुलजार, उनके तन के द्वारा कैसे और आगे पार्ट चला, ये सभी बातें, बहुत सारी बातें हैं, अभी भी कई बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो कि हमने नहीं जाने और हमें जानने चाहिए। पर समय के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस रूहानी यात्रा पर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, हर एक बात हम समझते जाएंगे। स्क्रीन पर आप फोटो भी देख सकते हैं दादी गुलजार का, कि दादी गुलजार के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों अवतरित होकर के जो ज्ञान अभी रह गया था सुनाना, जो समझानी हम बच्चों के लिए अभी रह गई थी, बाबा बाप और दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार के तन द्वारा वो ज्ञान वर्षा हम आत्माओं पर करते रहे। 2017 तक दादी गुलजार के तन में शिव बाबा आते रहे और ज्ञान सुनाते रहे, हम आत्माओं को भरपूर करते रहे। लेकिन उसके बाद दादी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, इस कारण बाप दादा नहीं आए। और फिर इस वर्ष 11 मार्च के दिन दादी गुलजार जी ने भी अपने पार्थिव देह का त्याग किया। और अब तो हम सब सिर्फ मेडिटेशन का साधन है जिसके द्वारा शिव बाबा का अनुभव कर सकते हैं और मिल सकते हैं। परंतु हमें भी कुछ देर नहीं हुई है, हम जब, वो कहते हैं दुनिया में जब जागे तभी सवेरा, आज हमें समझ मिल गई, आज ज्ञान मिला, तो आज से ही लग जाना है। ये नहीं सोचना कि हम क्यों नहीं थे 36 के समय पर जब ये हुआ, फिर जब दादी गुलजार के तन में बाबा आए तब हम क्यों नहीं थे, क्योंकि तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन आज हम जहाँ है, जिस समय पर हमें ज्ञान मिल गया है, अब हमें उस समझ को बढ़ाते जाना है और उसके साथ आगे चलते जाना है। समय कम है, बातें तो बहुत सारी है, हमने तो बहुत बहुत कम सुनाया है, लेकिन हमारी दीदी, हमारी बड़ी दादियों से अगर हम सुने तो शायद उन्हें तो ना नींद आए ना उन्हें समय का पता चले, जब वो उस महापुरुष ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनाना शुरू करे, कि उन्होंने तो उनके साथ जीवन जिया है, कि कैसे परमात्मा ने स्वयं शिव बाबा ने कर्म करके दिखाए ब्रह्मा के द्वारा। तो बहुत सारी बातें हैं, पर आज के लिए मुझे लगता है यहीं पर हम विराम करेंगे। जो वीडियो लिंक्स आपको दिए जाएं, कल जब हम क्लास में आएंगे उससे पहले तक जरूर उन वीडियोस को देखें, नोट्स हम सभी बना भी रहे होंगे। आप सब भेजना चाहेंगे अपने नोट्स हमें, कौन कौन भेजना चाहेंगे अपने नोट्स? निरंजना जी भेजना चाहेंगे, और बाकी किसी का जवाब नहीं आ रहा, अंजना जी नहीं भेजेंगे, और कौन भेजेंगे? साई करुणा जी भेजेंगे, बाकी जवाब और किसी का नहीं आ रहा। श्रवण कुमार जी भेजेंगे, मंजूरी बहन भेजेंगे, कृषिका जी भेजेंगे, वेरी गुड। पर इतने से ही लोग भेजने वाले हैं ऐसा, बाकी सब अच्छा, विद्यासागर जी भी भेजेंगे, वेरी गुड। तो सुप्रिया दीदी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ईमेल आईडी शेयर करेंगे तो सभी भाई बहने वहां पर अपनी नोटबुक को इफ पॉसिबल आप पीडीएफ स्कैन कर लीजिए, मोबाइल में कैम स्कैनर होता है, कैम स्कैनर नहीं तो आजकल कई प्रकार के स्कैनर आते हैं मोबाइल में, उसके थ्रू अगर आप कोई पीडीएफ बनाकर शेयर कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंगल सिंगल फोटो होगी तो अलग अलग होगी। आपको मिला है एड्रेस educationwing@pkivv.org, आप इस ईमेल एड्रेस पर अपनी नोटबुक की स्कैन कॉपी पीडीएफ फाइल बना करके भेजेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, ओम शांति।
आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे भी आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं educationwing@pkivv.org, और जिनको नोट्स भी भेजने हैं वो भी इस पे भेज सकते हैं। आपको जो भी आज की वीडियो के ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी के जो भी वीडियो लिंक्स हैं सबको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, आप उसे अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं।
ओम शांति। दीदी आज का सेशन भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा और बहुत ज्ञानवर्धक, लेकिन उससे पहले एक सूचना सभी भाई बहनों के लिए कि 30 अक्टूबर यानी कि कल हमारा प्रश्नोत्तर का सेशन रहेगा, तो आप अपने प्रश्न जरूर भेजिएगा और साथ ही हमारे राजयोग एक्सपर्ट उनके बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। साथ ही जो डे वाइज का आपको क्वेश्चनरी गूगल फॉर्म भेजा जाता है उसमें भी आपको अपने क्वेश्चन भेजने के लिए सुविधा दी गई है, यानी उसमें भी वो अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो आप उसका भी भरपूर फायदा लीजिएगा और क्वेश्चन भेज सकते हैं उसमें भी आप। तो दीदी आज के क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला प्रश्न आया है, जो ज्ञान में नहीं आए हैं उनका क्या होगा? शायद ये पूछना चाह रहे हैं ये
किस रेफरेंस में है कि जो ज्ञान में नहीं आए। आई थिंक ये शायद
इतना ही लिखा है इन्होंने, जो ज्ञान में नहीं आए हैं उनका क्या
लगता है। ये वो जो 84 जन्म वाला क्वेश्चन है बात थी, उसके आगे पीछे ये बात कही होगी कि जो ज्ञान में नहीं आए उनका वो 84 बर्ड्स का क्या। तो और भी बहुत बहुत सारी बातें हैं कि अगर ज्ञान में नहीं आए तो फिर ये कैसे और वो कैसे, तो वो तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, जिसका रोल जहाँ है वो आत्मा वही रोल प्ले करेगी।
जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हमारा 84 जन्म है संगम युग का, लेकिन अगर हमारी अभी मृत्यु हो जाती है तो अगला जन्म क्या संगम युग में ही गिना जाएगा?
जी, ये अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अगर हम कहते हैं ये 84वां जन्म है और अभी हमारा फिर से नया जन्म होता है, तो वो जन्म हमारा एक तरह से फिर से संगम युग में ही गिना जाएगा, क्योंकि हमारे आत्मा में तो वो संस्कार आ गए हैं ना, तो वो संस्कार आत्मा ज्ञान के संस्कार आत्मा में आ गए हैं, ज्ञान का विनाश नहीं होता है, तो जो हमारा जन्म होगा अगला वो भी इस ज्ञान, हम जन्म तो जैसे दुनिया में होता है प्रोसेस वैसे ही जन्म होगा, लेकिन जन्म के बाद हमें फिर से बाबा का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आत्मा में ज्ञान के संस्कार है। हम देखते हैं ना छोटे कई बच्चे होते हैं वो भक्ति करना शुरू कर देते हैं बहुत छोटी उम्र से, 3-4-5 साल की उम्र से, उनको किसी ने सिखाया नहीं है भगवद गीता पूजा पाठ करना, उनको सब कुछ आता है, संस्कार लेकर जाती है आत्मा। ऐसे ही हम भी यहाँ पर संस्कार ज्ञान के लेकर के जाएंगे तो हमारा अगला जीवन भी वहीं पर ही होगा, पर संगम पर ही होगा, परंतु क्योंकि शरीर छोटा है समझ आने में तो 8-10 साल लग जाएंगे, तब तक हम कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको ये नहीं सोचना है कि ये शरीर बीमार है बहुत परेशान है ना तो ये जल्दी छूटे तो दूसरा मिले, दूसरे में कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस समय पर समझ तो है दूसरा जन्म होगा इतना सा जन्म होगा, फिर बच्चा बड़ा होगा समझेगा, 8-10 साल तो उसमें ही वेस्ट हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि यहाँ हम जितना पुरुषार्थ कर लें इस शरीर में वो ही बेस्ट है। तो ये वैसे ये संकल्प ही नहीं करना है कि हमारा संगम युग पर कोई दूसरा जन्म हो, जो जीवन है इसी को ही ठीक से संभालना है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मन के लिए तो रोज हमें ये ज्ञान और योग का अभ्यास करना है, परंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए भी हमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस और अपने भोजन पर अटेंशन देना है।
जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम 84 जन्म का साइकिल पूरा करके ही परम धाम जाएंगे? अगर अभी हमने शरीर छोड़ा तो अगला जन्म होने तक आत्मा कहाँ रहती है?
ये जो पहली लाइन थी इस प्रश्न की कि 84 जन्म होने तक होने पर ही हम परम धाम जाएंगे, यस। एक बार जो परम धाम से आ गया ना नीचे सतयुग के स्टार्टिंग में, या जब भी आया, कोई सतयुग में आया, कोई त्रेता में आया, कोई द्वापर में आया, और कोई अभी अभी आया कलयुग में भी, लेकिन हम में से कोई भी बीच में से नहीं जा सकता। जब तक गेम पूरा नहीं हो, जब तक साइकिल पूरा नहीं हो, तब तक नहीं जा सकते। दूसरा, हम वहां से आ तो जाते हैं लेकिन अब हमें जाने का रास्ता भी भूल जाता है। फिर जा तो तभी सकते हैं जब संगम युग पर शिव बाबा वहां से आए। इसके लिए परमात्मा को कहते हैं वो हमारे गाइड हैं, मुक्तिदाता हैं। तो वो ही हमें फिर मुक्ति धाम में वापस, जब वो आकर के सारा ज्ञान देते हैं तभी हम जा सकते हैं। और इसके आगे वाला क्वेश्चन एक बार मोनिका बहन फिर से रिपीट करेंगे।
जी,
दो पार्ट क्वेश्चन के। जी
हाँ जी, आगे है, अगर अभी हमने शरीर छोड़ा तो अगला जन्म होने तक आत्मा कहाँ रहती है?
अगला जन्म होने तक आत्मा, इसके बारे में हम आने वाले सेशंस में जब हम अगली क्लास करेंगे तो और विस्तार से जानेंगे। बाबा ने हमें संगम युग पर सूक्ष्म वतन का ज्ञान दिया है, सटल वर्ल्ड, दूसरी भाषा में उसे एस्ट्रल वर्ल्ड भी कहते हैं। वहां पर आत्मा अपने प्रकाश के काया में रहती है, प्रकाश के एक तरह से लाइट के शरीर में रहती है। जब दूसरा जन्म होता है तब तक आत्मा वहां रहती है।
जी, नेक्स्ट है, अच्छी विचार, लेकिन हमारे घर के लोग हम लोगों से अनसेटिस्फाइड क्यों रहते हैं? मतलब ये विचार तो अच्छे लगे शायद इनको, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है।
उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, अगर वो फिर से अगर अपना क्वेश्चन या तो अभी टाइप कर दें चैट बॉक्स में, या फिर जो गूगल फॉर्म मिला है उसमें लिख दें, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी है कि परिवार वाले हमसे क्यों अनसेटिस्फाइड रहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम सुबह लेट उठते हैं, उनका कहना नहीं मानते, हम खुद भी तो हो सकता है ठीक नहीं करते हो कई चीजें जो उनको पसंद नहीं आती हो, कुछ ज्ञान से रिलेटेड भी बातें हो सकती है। तो देर आर लॉट मेनी रीजंस कि कोई हमसे क्यों सेटिस्फाई नहीं है हमारे परिवार के मेंबर्स। तो जब तक वो जो पॉइंट है कि किस कारण से अनसेटिस्फेक्शन है, अगर वो क्लियर हो तो फिर आंसर भी मुझे लगता है क्लियर मिल सकेगा।
जी, एक और है कि हाउ टू कन्विंस माय फैमिली मेंबर्स हु हैज यूज्ड टू से मी एज मैड बिकॉज वी आर लिसनिंग दीज थॉट्स एंड दे आर सेइंग व्हाई आर यू लिसनिंग वन थिंग डेली एंड सो ऑन। ये शायद इन्हीं का ही क्वेश्चन था पहले भी।
दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति कुछ अलग और कुछ अच्छा और कुछ डिफरेंट करता है ना, तो उसको यही टाइटल मिलता है, यू हैव गॉन मैड। आज जितने भी साइंटिस्ट है जिन्होंने भी कुछ डिस्कवरीज की है ना, वो भी सब MAD वाले टाइटल से होकर के ही गुजरे हैं, तभी वो आज यहाँ पर पहुंचे। तो हमें उससे डरना नहीं है उस बात से, लेकिन हाँ, हमें हमें अपने व्यवहार में कुछ ऐसा भी नहीं करना कि सामने वाले को हर्ट है ना। हमको ऐसा नहीं कि हम रोज ज्ञान सुन रहे हैं, बातें बहुत अच्छी लग रही है, तो हमें अपने परिवार के लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि उनका थिंकिंग पैटर्न अलग है, या हम जो करना चाह रहे हैं ना, अभी हम आगे आगे और भी बहुत सारी बातें सुनेंगे हमारे जीवन के लिए, कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में भी हम सुनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने ज्ञान सुन लिया है तो अब हम सोचें ये सब भी वैसे हो जाए, ये सब भी चेंज हो जाए, या ये सब भी मुझे इस ज्ञान के साथ एक्सेप्ट करने लग जाए। तो ये तो हम सबकी अपनी 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 स्टोरीज हैं, एंड वी हैव टू मेक द स्टोरी ब्यूटिफुल। खराब नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान मिला है किसके लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए। हमारा जो भी फैमिली है उसको और ब्यूटिफुल बनाने के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स को और सुंदर करने के लिए, ना कि वहां पर झगड़े क्रिएट करने के लिए, एक दूसरे में मन मुटाव क्रिएट करने के लिए। तो अगर परिवार के लोग कुछ कुछ बोलते हैं ना, तो पहली चीज तो हमें कभी भी पलट के उन्हें जवाब नहीं देना है, इरिटेट बिल्कुल नहीं होना है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, वो ऐसा ही बोलेंगे ये सोच लेना है, वो ऐसा ही बोलेंगे, इसके सिवाय उनसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, इनको क्यों बुरा लगता है मेरा सुनना, मुझे तो अच्छा लग रहा है, और जबरदस्ती की खींचतान अपनी बुद्धि में कि वो मना कर रहे हैं हम सुन रहे हैं। हम उनको एक बार बैठ के प्यार से समझा दें कि मुझे ये सुनना अच्छा लगता है, मुझे इसको सुनने से एक्स वाई जेड जो भी फायदा हो रहा है वो आपको शेयर करना है, और उसके बाद फिर वो कुछ बोलते हैं तो उनका कटाक्ष या उसका पलट के जवाब देना वो कभी नहीं करना, सिर्फ मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है। आपको भी ज्ञान सुनते रहना है, ना उनको डिस्टर्ब करना है ना खुद डिस्टर्ब होना है, कि वो डिस्टर्ब तो हम डिस्टर्ब, हम डिस्टर्ब तो वो डिस्टर्ब, है ना। अभी तो यही केमिस्ट्री चल रही है ना हमारी, सारा इधर से इधर कनेक्टेड है, तो इसलिए अभी हमको सुनते 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 जाना है। जब तक हम अपने जीवन में ऐसे अनुभव नहीं कर लेते इतने स्ट्रांग कि अब पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कर ले हम इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, इसी रास्ते पर चलेंगे, तब तक एकदम शांति से चुपचाप आगे बढ़ते जाना।
ओम शांति। सभी भाई बहनों के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे पता चलता है अगर जिज्ञासा है तो माना आपने उसको समझने की कोशिश की है, अंदर आप उसे जीवन में धारण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के, क्योंकि आज समय की सीमा है, तो कल हम सारे प्रश्न लेंगे जिनके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर मुकेश जी हैं, जिग्नेश जी हैं, जो भी हैं, सबके हम क्वेश्चन कल लेंगे। ज्ञान से आधारित और आपके जीवन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कल उसको जरूर आप हमारे साथ क्वेश्चंस को शेयर करिएगा। कल सिर्फ प्रश्न और उत्तर का ही सेशन रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहेगा। जो YouTube में भी भाई बहन हैं वो भी अपने प्रश्न वहां पे चैट में डाल सकते हैं, वहां से भी आपके प्रश्न को लिया जाएगा। तो कल हम लोग कल ये पूरे आपके प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। हार्मोनिका बहन आप आगे ले सकते हैं।
जी दीदी, आज समय हो गया है इसलिए आज इतने ही प्रश्न लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रश्न जरूर भेजिए, और वैसे भी जिसने बहुत गहरी भक्ति की, लोगों ने उसे भी पागल कहा, मीराबाई को भी कहा, बावरी कहा उसे, तो हम तो फिर भी डायरेक्ट भगवान से जुड़ रहे हैं, तो इतना तो मिलेगा ही, क्योंकि सद्युग में जाना है, बहुत लंबी दौड़ है। तो आगे बढ़िए और छोटी छोटी बातों को अनदेखा कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।
Goodbye.